नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख करते हुए कहा कि रुपए का मूल्य बाजार से प्रेरित है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के व्यापक आर्थिक आधारभूत तत्व मजबूत बने हुए हैं। आज लोकसभा में रुपए के अवमूल्यन पर प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत संकेतक मजबूत हैं।
भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है, हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है, इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के बैंक ग्राहकों के डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कानूनी और नियामक ढांचे के अंतर्गत काम करते हैं। वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये जानकारी दी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जाने KYC ढांचे और दिशा निर्देशों के अंतर्गत बैंकों को ग्राहक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी होती है।
RBI has issued master directions.
रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की जानकारी की गोपनीयता और जानकारी साझा करने के बारे में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे ग्राहकों की जानकारी को गोपनीय रखें। मुख्य रूप से 5 विभिन्न कानून हैं। इनके अंतर्गत बैंकों और डेटा इकट्ठा करने वाले संस्थाओं को नियमों का पालन करना होगा। इनमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी अधिनियम और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम शामिल है।
राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और मुस्लिम समुदाय को मुख्य रूप से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्षी दलों को न तो बहस में रुचि है और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों या संविधान के प्रति सम्मान है। शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य के लक्ष्मण ने कहा कि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरलम जैसे विपक्षी शासित राज्यों में OBC आरक्षण के प्रावधानों का धर्म के नाम पर दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। श्री नड्डा ने विपक्ष द्वारा बहस से बचने और व्यवधान उत्पन्न करने की आलोचना करते हुए ऐसे व्यवहार को अनुचित और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा तत्पर है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड JDU के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए हाल ही में चुने जाने के बाद संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए राज्य विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वे इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। निर्वाचन आयोग ने आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर एक ही चरण में मतदान अगले महीने की 23 तारीख को होगा। 6 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन से शुरू होगी। 9 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत असम और पुदुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल एक दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री मोदी महावीर जयंती के अवसर पर गांधीनगर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। जनगणना 2027 पहली अप्रैल से शुरू होगी। ये स्वतंत्रता के बाद की 8वीं और इस श्रृंखला की 16वीं जनगणना होगी। आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस वर्ष पहली अप्रैल से 30 सितंबर के बीच 30 दिन की अवधि में घर घर की सूची तैयार करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।